भगवान ही हम सब जीवों को भगवान कहने के लिए, परिचय देने के लिए तैयार बैठे। जब अज्ञान ही हमको कह रहा है कि आप भगवान से अलग हैं, भगवान आपसे दूर है, जब भी हमारी अंतर्दृष्टि खुलेगी तभी पता चलेगा कि अंदर से मैं कौन हूं, बाहर कौन है और अंदर कौन है। पांच भौतिकता के साथ संबंध है तब तक तो आप बाहर हैं, और जब सूक्ष्म आत्मदृष्टि से आप देखेंगे तब आत्मा में असंग हो, नित्य मुक्त हो, फिर भी शरीर के साथ रह करके मैं अपने स्वरूप को भूल करके भौतिकता से संबंध जोड़ करके वृत्तियां को अहंकार युक्त बना करके शरीर मैं हूं, मेरा अस्तित्व ही यही है, ऐसी हमारी संस्कार वाली वृत्ति दृढ़ हो चुकी है, तब तक हम हमारे निज स्वरूप भगवत स्वरूप को हम ही नहीं देख सकते। हाँ, देखेंगे शरीर से जो नाम रूपात्मक है। आप नींद में सोए हैं लेकिन कोई आपका नाम दे करके आपको आवाज करे तो भर निंद्रा गाढ़ नींद से भी आप उठ करके बाहर आएंगे, अरे मैं हूं, क्या बात है, ये क्या है, हमारा देहाध्यास। शरीर ही मैं हूं, इस शरीर का नाम है, उसके द्वारा उसको पुकारा जाता है, और नींद में भी हम उस अज्ञान का दृढ़ीकरण से के कारण ही, अज्ञान के दृढ़ीकरण के कारण हम नींद से भी जाग जाते हैं उस नाम के द्वारा। लेकिन नाम और रूप, शरीर को नाम है, शरीर को आकार है, शरीर को उसका रूप है। जो नाम रूपात्मक है उसकी बात आगे बताएंगे प्रभु, परंतु जो नाम और रूप उसको साथ में लेकर के आप आए हैं, उस लक्ष्य को, प्रश्न का उत्तर जो आप मानना सुनना चाहते हैं, तो बात अलग है। नाम रूपात्मकता तो क्षणिक है, पानी के बुदबुदे की तरह है, कब वो फूट जाएगा उसका हमको ही पता नहीं। और ऐसे तो जल में कई बुदबुदे होते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं, बनते और बिगड़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रकृति की चल रही है, आत्मा की। बुदबुदे के अंदर जो जल है वो तो वही है, वैसे शरीर रूप बुदबुदे हमारे बनते रहे, बिगड़ते रहते, जन्मते मरते, जैसे समुद्र में पानी के तरंग उठते हैं उसमें फिर मिल जाते, उठते फिर मिल जाते, वैसे हम भी शरीर से ऊपर उठते हैं, फिर शरीर चला गया, छूट गया, तो वही तरंग की तरह फिर पानी में मिल जाते हैं। हमारा सही स्वरूप जल है, तरंग का सही स्वरूप जल है, ऊपर उठने के बाद एक क्षणिक अवस्था उसको प्राप्त होती है, उस क्षण तक वो ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, जितनी ताकत होगी ऊपर उठेगा, लेकिन एक उसकी कक्षा आ जाएगी, एक हद, एक सीमा आ जाएगी, वो सीमा से अपने आप ही गिर जाएगा, वहां से आगे नहीं बढ़ सकता, और गिरने के बाद वो वही का वही जहां पर जल है। वैसे शरीर से भी हम अलग हैं, जब तक शरीर अलग है तरंग की तरह, बुदबुदे की तरह, लेकिन जब शरीर छूट जाता है आत्मा सर्वव्यापक में मिल जाता है परम के अंदर, तब हम अलग नहीं बचे। जैसे कई बार अपने बात हो चुकी है, जल का एक बूंद, उसका पता पूछा कि ये समुद्र मेरा पता है, जब भी मेरे को ढूंढना हो तो वहां पर आ जाना। जाकर के वो जल का बूंद था, तो जाकर के मिल गया जल में। उसका अणु अणु पूरे विश्व के अंदर जो सागर है उस जल में व्याप्त हो गया। अब वो बूंद बूंद नहीं रहा। वैसे जब तक हम शरीर से अलग हैं, तब तक वो बूंद की तरह हमारा पता देंगे, मैं ऐसा हूँ, मेरा ये नाम है, मैं ये ज्ञाति का हूँ, मैं ये घर के अंदर, ये गांव के अंदर मैं रहने वाला हूँ, ये आपका पता आपने दे दिया। लेकिन ये जो पहने हुए जो कपड़े हैं उतार दिए, शरीर छूट गया, वही आत्मा है सही, लेकिन सर्वव्यापक है वो। आपको उस शरीर में जो पा रहे थे वो अब नहीं है, लेकिन है सही, क्योंकि वो शाश्वत है, वो अमर है, अनादि है। जो अमरत्व है वो आत्मा का, आत्मा की है, और जो मरण धर्म है वो शरीर का है। आत्मा से और शरीर से ऐसे पूछो तो उसको कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। हाँ, जब तक संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म भोगने का साधन है शरीर, तब तक आप उसमें पड़े रहते हैं। पड़े रहना ही कहो, क्योंकि एक जंगल है, झोपड़ी में पड़े रहते हैं, वहाँ सुख दुख सहन करते हैं, ताप ठंडी गर्मी सब कुछ। ऐसे ये चोला है, उसमें पड़े हैं, उसमें सुख दुख, शांति अशांति, गर्मी ठंडी सबको सहना पड़ता है, और सहते सहते एक दिन ये शरीर छूट जाता है, तब हम निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद हमारी वो पहचान पूरी होगी, समाप्त होगी। जाते जाते समय ऐसा हो चला गया, ऐसा चला गया, फिर तो घर में जो फोटो लगाई हुई थी वो भी 4-5 पीढ़ी के बाद उतार के निकाल दिया करे, पता नहीं ये किसकी फोटो है, उतारो फेंको बार, पुरानी हो गई है, अब तो कचरा सी लग गई। अब देखो, जब नाम रूपात्मकता है तब संबंध कुछ कभी न कभी अपने आप टूटते जाएंगे, कभी नहीं रहने वाले। जितने बनते हैं संबंध इतने ही बिगड़ते हैं, व्यवहार से भी बिगड़ते हैं, और ज्ञान दृष्टि से देखो तब भी वो खत्म पूरे हो जाए। जो भौतिकता से जुड़ा हुआ है और भौतिकता की जितनी उसकी आयु होती है अधिक नहीं होती, जब वो पूरा हो गया, वो संबंध भी पूरे हो गए, वो नाम लिखवाया था बड़े अक्षरों में एक मकान के ऊपर, भूकंप आया, मकान धस गया, नाम चला गया, क्या बचा? जो नाम रूपात्मकता है वो क्षण जीवी है, आज है कल या परसों रहेगी भी नहीं, उसका कोई पता। तो भगवान हंस स्वरूप पूछ रहे हैं, सनकादिक भी ज्ञानी है, वैखानस है, और ब्रह्मा जी भी उनके साथ में है, जो वेदों के ज्ञाता है। अब प्रश्न यहां पर ऐसा क्यों किया, और प्रश्न का उत्तर देने से पहले भगवान ने उसके प्रश्न का दूसरा, उसके ऊपर प्रश्न क्यों किया, प्रश्न तो था ही, मन और विषयों से अलग कैसे किया जाए। लेकिन प्रश्न के ऊपर से एक नया प्रश्न उठा है कि आप किस दृष्टि से प्रश्न पूछ रहे हैं, होता है। प्रश्न पूछने वाला कौन है ऊपर, उसके ऊपर से पता चलेगा कि किस जवाब कैसा चाहता है। कोई सामान्य अज्ञानी व्यक्ति है, वो प्रश्न का उत्तर वही चाहेगा कि उसका जो स्तर है समझ लिया। लेकिन एक चिंतक है, एक विद्वान है, एक ब्रह्मनिष्ठ है, उसके पास ये प्रश्न किया होगा तो वो अपनी कक्षा से ही उसका उत्तर देगा। जैसी समझ होगी वैसे ही वो स्वरूप का भी उसको ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पंडित होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। हमारे ऋषि कहाँ पंडित थे, कहाँ विद्वान, कहाँ पढ़ने के लिए गए। हमको कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, सही बात है, अपौरुषेय ही है। लेकिन निमित्त किसी को बनाते हैं। जब भी इस सृष्टि के अंदर कोई भी ग्रंथ नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, तब जाकर के जिस महापुरुष, जिस ऋषि के मन के अंदर विचार आए होंगे और जिस महापुरुष ने तपस्या करके जो आवाज प्राप्त की होगी और अपने अंतःकरण से और मन से जो स्फुरणा हुई होगी, वो पढ़ने से तो आई नहीं है, पढ़ाई तो उसके पहले थी ही नहीं। तो जो स्फुरणा हुई, जो अंदर से निकला है, ओ प्रभु का ही अंदर से संचार हुआ है। भगवान वेदव्यास है लेकिन वो एक निमित्त है। उनको उससे पहले आगे किसी ने भी वो ज्ञान दिया नहीं था, उस विचार का कोई भी पता भी नहीं था। जैसे व्यासासन पर बैठते हैं तो अच्छे अच्छे भाव अंदर से निकलते हैं, वक्ता को पता भी नहीं चलता है कि कहां से आया और ये क्या निकल रहा है अंदर से। वो क्या है, वो अपौरुषेयता है। तो वेदों की अपौरुषेयता इस प्रकार की है। निमित्त व्यास जी है, कोई भी महापुरुष है, लेकिन उनको जहां से प्रेरणा मिली है वो भगवत प्रेरणा है, इसलिए उसने लिख लिया कि मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन जहां से उसकी आज्ञा और प्रेरणा हुई है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेयता का अर्थ यही है, निमित्त किसी को बनाते। तो ये ज्ञान है आत्मा, वो ज्ञान भी प्रश्न का उत्तर देने वाला और सुनने वाला भी कौन है। जहां पर भगवान ने प्रश्न के अर्थ स्वरूप को लेकर के, प्रश्न का अर्थ है क्या, मन, वचन, दर्शन एवं शरीर की जो भी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों से मेरा ही अनुभव होता है, स्थूल भाव से, शरीर भाव से, तो मैं हूं, मेरा है। तो जो ये प्रश्न का अर्थ शरीर के संबंध के साथ बनता है, तब तक तो आप यहां पर सीमित हैं। उस सीमा से आप बाहर नहीं निकल सकते वहीं पर। लेकिन जब शरीर भाव हटेगा तभी आप उससे ऊपर उठ सकते हैं, बाकी तो जहां पड़े पड़े। एक जीवन का नहीं, या एक दिन या एक साल का नहीं, एक जीवन का भी नहीं, 84 लक्ष का है ये संबंध। कि शरीर भाव है, जीव भाव है, और उसके कारण वो सब अनुभव है। और कहते कि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, मतलब स्थूल भाव से, स्थूल दृष्टि से बात कर, मेरे अतिरिक्त मतलब तात्पर्य वहां पर अहंकार आ गया है। तो अज्ञान भरा पड़ा हुआ है, अज्ञान से तो अपने स्वरूप को ढका रखा है, और उसके ऊपर ज्ञान आगे बढ़ गया, वृक्ष निकल गया उसके ऊपर, वृक्ष हो गया। और कुछ है ही नहीं मेरे से, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही ये कर सकता हूं, मेरे बिना हो ही नहीं सकता, मैंने किया। जैसे लोग कई बार प्रयत्न करते खींचते हैं कोई चीज उठाने के लिए, कई लोग लगे हुए, एक आदमी आ गया उसमें अधिक आकर के उसने उठाने की ताकत की, तो सब में उसमें ताकत लग गई, तो वो उठ गया। क्या वो व्यक्ति अहंकार कर सकती है कि मैं आया मेरे से ही, मैंने ही ये उठाया, कह सकता है? सबकी शक्ति लगी हुई थी लेकिन कम थी, उसमें मैंने अपनी शक्ति शामिल कर दी, लगा दी, तब जाकर के उठाया, तब तक तो सही है। लेकिन कर्तापने का अहंकार जो है, कर्तापन का, उसमें ऐसा ही बोल देगा कि तो मैं आया और मैंने उठाया, तुम लोग तो कब के कर रहे थे, परिश्रम कर रहे, उठा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तुम लोगों से नहीं उठ पाया, जब मैं आया तभी उठा, इसलिए मैंने किया। अहंकार से बुद्धि आ जाए, ये अहंकार। तो यहां पर कहते हैं मेरे से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो यह अपने प्रश्न की निर्बलता है। देखो निर्बलता, अज्ञान निर्बलता का दूसरा, क्यों कि आत्मा तक पहुंचने की आपकी शक्ति नहीं है। तो प्रश्न इस प्रकार का उठेगा ही नहीं, और प्रश्न उठेगा मगर उसमें ऐसी जिज्ञासा होगी ही नहीं कि आत्मा को मैं पहचानूं, लेकिन मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो वहां तक ही वो सीमित है, उसकी कक्षा है, उससे आगे बाहर निकल ही नहीं सकता। वही खड़ा खड़ा अहंकार के साथ, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा करने वाला हूं, गर्व से कह रहा, लेकिन मृत्यु एक दिन दबोच देगी उसको, गले से पीछे से पकड़ती देने लगेगी, तब और मैं, मेरा वो अहंकार, मैं करने कहां गया हूं, शरीर तो वही पड़ा हुआ, क्योंकि जब तक शरीर भजन, शरीर का ही भजन होता है, जब तक शरीर का ही हमारा लक्ष्य बना रहता है, तब तक आत्मा तक पहुंचना बड़ा कठिन, बहुत मुश्किल। यही बात को कहते हुए भगवान कहते हैं, मन में, इंद्रियों में अनुभव होता है और अपने कर्तव्य पने का अहंकार रहता है। तो आपका प्रश्न जो इस प्रकार ही है, स्थूल भाव से भौतिकता का प्रश्न है, तो ऐसा समझो कि आपने अभी तक कुछ नहीं पाया है, अब जाए भाई। अब विषयों में मन और मन में विषय, एक दूसरे का नाता संबंध है, पानी में दूध और दूध में पानी, तो वैसे ही दोनों का यह संबंध यही है। इस प्रकार का ये दो शरीर है जीव के, मन और विषय, दोनों जीव के शरीर है, न ये जीव के है न जीव उनका है, मन और शरीर एक दूसरे में है, लेकिन न उनका है न वो उनका है, भ्रांति मात्र है। जब तक इस भ्रांति को मिटा नहीं पाते, दूर नहीं हटती हमारे मन से, विचारों से, तब तक हम वही के वही, उसमें से जीव भाव ही बना रहेगा। जो जीव वो मेरा स्वरूप है, ऐसा समझ लिया, मान लिया, उसको मन एवं विषय की एकता का पृथककरण की चिंता ही नहीं है, और करे भी क्या। जब अवस्था ही ऐसी बनी हुई है तब विचार और चिंतन आएगा ही, लगाव भरपूर है, उसमें पृथकता का भाव ही नहीं है, मैं ही हूं, मेरा ही है, तो वहां पर वो स्थूल भाव, वह मुझसे एक होकर मन और विषय दोनों को छोड़ दे, अभी होगा कहां से, जब अपने में ही जो फंसा हुआ पड़ा है, अपना ही स्वरूप उसको पता ही नहीं चल रहा है, अंधा है, मूर्ख है, न आगे बढ़ सकता है न पीछे जा सकता है, वही का वही। अब उस अज्ञान अवस्था और जड़त्व का स्वरूप धारण कर लेते, वहां मेरापन, केवल शरीर ही मैं, उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसा भी आगे अपने देख लिया। शरीर का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है, शरीर नहीं होगा तो मैं भी नहीं हूं, शरीर का नाश हो गया उसके साथ साथ मेरा भी नाश हो गया, ये जो अज्ञान है उसके कारण ही वह ऐसी अवस्था में पड़ा रहता है, जो अज्ञान जिसको कहते हैं। अब जब पृथक मानते ही नहीं है तो चिंता किसकी करनी है, जिसको ज्ञान की जिज्ञासा है वही कहेगा, उसको चिंता होगी कि स्थूलता का भाव मुझे नहीं चाहिए, शरीर तो मेरा नहीं है, नामरूपात्मक है, नाशवंत है, एक स्वप्न है शरीर, एक स्वप्न में से जागे तो दूसरे स्वप्न में बाहर आए, और दूसरे स्वप्न में से जब जागेंगे तब आप पूरा जग सकते हैं, वैसे ये शरीर भी एक स्वप्न के अंदर दूसरा स्वप्न आता है, जब पहला स्वप्न दूसरा स्वप्न टूटेगा तो पहले स्वप्न में आएंगे, और पहला स्वप्न टूटेगा तब आप जागृत होंगे। बस यही हमारे जीवन की अवस्था, मन की अवस्था बन गई है, और स्वप्न को ही हम सत्य मान करके फिर रहे, घूम रहे हैं, और उसमें जो भी सुख दुख आदि प्राप्त हो रहे हैं उसको भोग रहे हैं, उस भोगों से आनंद ले रहे हैं, उसके स्पर्श से हमको आनंद आ रहा है, कि कहते कि बस यही मेरा स्वरूप है और यही मेरा विषय है, यही सुख ये मेरे लिए अति उत्तम है, यही आनंद, ये भोग, यही मेरा सब कुछ, वहां उकुंठित हो गए। अज्ञान अवस्था के कारण न आगे बढ़ सकता है, और अध्यास और आसक्ति के कारण न पीछे हट सकता है। तो जब ऐसी अवस्था जड़त्व की आ गई, तो मूढ़ और मूर्ख वही पड़ा है, वहां पर आगे जा करके देखेंगे तो वेदांत अब वहां पर आगे बढ़ रहा है, घट और पट, मिट्टी और घड़ा, वहां पर अब आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा विषय गहन बनता जाएगा। शायद आप लोगों के बीच में किसको कितनी समझ में आएगा वो भगवान जाने। हरि ओम तत्सत्। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरं। भगवान ऋषिकेश हमारे स्वस्वरूप के दर्शन कराते हुए उद्धव जी को मन और विषय को अलग कैसे करें उस जिज्ञासा का जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए भगवान स्वयं हंस का रूप धारण करके, हंसावतार लेकर के ये समस्या का समाधान दे रहे हैं। एकादश स्कंद की यह प्रश्न वाली जो कथा भगवान हंस कह रहे हैं उसको हंस गीत कहते हैं। भगवान का वो हंसावतार, तात्पर्य है कि भगवान कौन सा अवतार कब लेते हैं ये हमको तब ही जानकारी मिलेगी, ज्ञान होगा कि जब हमारे में जिज्ञासा कैसी है। प्रभु कहीं बाहर प्रकट नहीं है, हमारे अंतःकरण में ही भगवान का प्रागट्य होता है और हमारे में ही उन प्रभु के दर्शन होते हैं। सनकादिक ऋषियों को जिज्ञासा हुई मन और वासनाओं को अलग करने के लिए। भगवान के पास गए, तात्पर्य यह कि स्वयं आत्मचिंतन करने लगे, अपने स्वस्वरूप में जाकर के वो बैठ गए एकांत में। जैसे वृत्तियां अंतर्मुख हुई वहीं पर ही उनको अपने में से ही उस प्रश्न का जो जवाब है उसका उदय हुआ। जब ज्ञान का उदय होता है तब ही जाकर के अंधकार अज्ञान का मिटता है और प्रकाश आएगा। परंतु यहां पर प्रश्न करने से पहले पूछ लिया है कि आप किस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं। आपका प्रश्न अध्यात्म परक है या भौतिकता परक है? स्थूल का उत्तर स्थूल रहेगा, सूक्ष्म का उत्तर सूक्ष्म बनेगा। परंतु आप जिज्ञासा किस प्रकार की कर रहे हो? यहां पर भगवान इतना स्पष्ट बता रहे हैं कि जब आप स्थूल भाव से कह रहे हैं तब तो आपका प्रश्न बड़ा निर्मल है, शरीर के बाद भोगवाद की बात कर रहे हैं। जब भी आप चाहते हैं कि शरीर के संबंध कहीं की बात हो जाए तब तो ठीक है, वो प्रश्न का उत्तर सब कोई दे सकता है। परंतु जब हम हमारे स्वरूप के तरफ अंदर जा रहे हैं, हमको हमारी चेतना हमारी आध्यात्मिकता को जगाना है तो उस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही संभल के देना पड़ेगा, खूब चिंतन करके देना पड़ेगा। तो कहते हैं आपके प्रश्न की निर्बलता हमने देख ली, क्योंकि आप शरीरवादी हैं, आप मात्र भोगों का ही चिंतन कर रहे हो, विषयों में मन और मन में विषय, ये दोनों तो जीव के है, शरीर के है, शरीर के अंदर है ही मन और विषय, वो जीव का है और जीव शरीर में है ही। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो न वे जीव के हैं न जीव उनका है, मन और भोग, न जीव उनका है न वो जीव के है। अब जब देखा या इतना तो स्पष्ट हो गया तो कहते कि जीव तो मेरा स्वरूप है, जीव मेरा स्वरूप है। उसको मन एवं विषयों की एकता का एक या पृथक करण की चिंता ही क्या कहां रहती है, क्यों रहेगी? जब जीव अपने को विषय नहीं मानता है, जब जीव अपने को मन नहीं मानता है, जीव तो आत्मा का दूसरा स्वरूप है, तो जो चिंता किसकी करे, चिंता क्यों करे, अलग करने मेरा है ही नहीं तो मैं इसके लिए क्यों रोऊं, क्यों धोऊं, हटो निकल जाओ यहां से आगे, अपना मन लगा ही नहीं, लगाना भी नहीं है और पड़ा है, मेरा है ही नहीं, हो गया पूरा काम, आपको स्पर्श नहीं करेगा, टूटेगा तब भी कुछ नहीं और वो मिल जाएगा तब भी कुछ नहीं, दूसरे का उसको मिल गया, मेरा क्या, बस निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, वही युक्त है, वही अपने में मिला हुआ है, निष्काम सर्वकामेभ्यो, सब में से अपनी वृत्ति को हटा लो, उठा लो उसमें से, कभी भी उसमें मत लगने दो, मछली जल में जी रही है, घूम रही है, लेकिन कांटे के ऊपर एक खाने का पदार्थ चिपकाया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए गई तो वो खाने की चीज तो मुंह में आने से पहले वो कांटे में फंस गई, उसका मुंह फंस गया, उसने जब स्प्रिहा की तो मुझे ये खाना है, मैं ये खाने की चीज है, मैं खाऊंगी, जहां खाने के लिए पकड़ने के लिए गई वो स्वयं पकड़ गई, पकड़ने गई मगर वो स्वयं पकड़ी गई, अब जीवन ही वहां पर खतरे में आ गया, निष्प्रह सर्व काम है, कभी भी किसी की भी स्प्रिहा मत कर, सहज जीवन है उसको जीते चलो, जीते चलो, देखो फिर जीने का आनंद, जब भी कहीं पर पकड़ने की बात आई वहां पर फंसोगे और पड़े हुए भी उसको देखना नहीं, उसको पकड़ना नहीं, तब तो आप स्वतंत्र है, सुरक्षित है और सुखी है जीवन जीवित है, जहां पर भी हमारा लगाव आ गया वहां पर हमारी शांति चली गई, हम खो बैठे अपनी स्वतंत्रता को, हमको पता नहीं है, उस समय तो स्वार्थ ही दिखाई दे रहा है, पकड़ लो इसको, ये मेरा है, बहुत अच्छा है, मैं अपने पास रखूंगा, उसको घर ले जाऊंगा, वही चिंतन रहता है, वही उसकी मानसिकता बनी रहती है, परंतु जब उसको पकड़ता है तब से ही आरंभ हो जाता है परतंत्रता का, ये तो मेरा है, मेरे हाथ में, दूसरा कौन ले सकता है, दूसरा कोई झपट के लिए आया तो उसको उसका सामना करना पड़ेगा, प्रतिकार करना पड़ेगा, अब क्षण दो क्षण पहले तो ना कुछ था, अपना हमारा कुछ नहीं था, और उसको पकड़ने के बाद सब कुछ आ गया, राग द्वेष भी आ गया, शत्रुता भी आ गई, आवेश भी आ गया, जब उसको पकड़ा तब उससे पहले दुकान में चीज पड़ी थी, देख लिया, लेकिन उसके प्रति हमारा कुछ लगाव नहीं था, लेकिन उसको देख करके उसकी कीमत देख करके खरीद लिया, फिर देखो क्या मानसिकता है उस समय, तो जब भी हम लग जाते हैं, लगाव आ जाता है, तब वहीं से ही दुख का आरंभ होता है, गुलामी की प्रतीति होती है, परतंत्रता का हमें स्पष्ट दर्शन हो रहा है, लेने गए थे सुख कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊं और ये चीज मिलेगी तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, सुख मिलेगा, जिसमें से सुख बुद्धि थी वहां पर गए, उसने बंधन में डाल दिया, जहां बंधन में फंसे कि हमारा सुख नहीं रहा और दुख और दुख बढ़ गया, गए थे लेने सुख और बढ़ा के आए दुख, यही है बंधन, यही है हमारे जीवन का, हमारे जीव का मन और विषय भोगों के साथ का लगाव, ये है उसका संबंध, और वो संबंध आपका बनता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता भी चला जाएगा, क्यों? कि उसमें हमें एक स्पृहा है, एक लालच है कि उसमें से हमको सुख मिलने वाला है, हमको कुछ न कुछ इसमें से मिलने वाला है, इसलिए वहीं से हम उसको लेंगे, नहीं छोड़ेंगे लिए बिना। तो ऐसी हमारी जो लगाव की वृत्ति है मन और विषयों के संबंध में, यदि जीव भी वहां पर पहुंच गया है तो जीव भी उसका स्वरूप बन जाता है, जीव मन का स्वरूप बन जाएगा, वही जीव मन को साथ लेकर के विषयों का स्वरूप बन जाएगा, और फिर उसके पीछे पीछे असंग होते हुए निष्प्रह होते हुए भी जो मात्र दृष्टा है, स्वतंत्र है, वो आत्मा को भी उसके साथ खींचता है, अपनी चेतना उसके साथ जाएगी सही, मगर वो मात्र दृष्टा बन करके उसके उसके सुख दुख को देखता रहता है, दुखी मन होता है और जीव भी उसके साथ दर्द की पीड़ा सहन करता है। लेकिन जीव ऐसा समझ ले कि मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मन भी मैं नहीं हूं, विषय और भोग भी मेरे नहीं है, मैं हूं जीव स्वरूप मगर आत्मा के स्वरूप, बस आत्मा के तरफ चले गए उसके पक्ष में तो आप शांत हैं। यदि वही जीव भाव से आप मन और भोगों के तरफ चले गए तो आप बंधन में हैं, दुखी हैं। जब भी पराया मान करके आप उससे अलग हो जाते तब तक तो आप अशांत नहीं होते, लेकिन जब भी देखा और अपना कर लिया और अपना मान लिया, वहीं से दुख का आरंभ हो चुका। लेते जाओ ये चीज, ले जा रहे हो तो इसको भी साथ में ले जाओ, हमारी इनामी योजना है, इतना ले जाओगे तो इतना मुफ्त में दे देंगे, आते हैं एडवर्टाइज देखो, इतना खरीद लो इसके साथ इतना मुफ्त मिल जाएगा। तो वैसे कोई भी चीज को आपने पकड़ ली तो भाई इसके साथ इनाम में ये चिंता भी ले जाओ, उसको संभाल लेती, साथ में ले जानी पड़ेगी, कहाँ जाओगे, यही है हमारे जीवन का नाटक, यही है हमारे जीवन की आदत, और आदत पड़ गई है, जैसे किसी को तंबाकू खाने की, किसी को बीड़ी पीने की, किसी को शराब की, वैसे भी आदत पड़ गई, तो आदत वाले को जैसे उसके जैसे हाल होते हैं वैसे हाल हमारे भी होते जाए, उसमें फर्क कोई नहीं, जिसने पकड़ा वो उसके पीछे वो बंधन में आ गया, हम उसको नहीं पकड़ते हैं, वो हमें जकड़ लेता है, हम आनंद में आ जाते, हमने पकड़ लिया, हमने ले लिया, लेकिन आपको जकड़ रखी, ऐसा जकड़ेगा कि आपको उसको संभालने में दुखी दुखी हो जाओगे, छोड़ो, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो। जब भी जीव भाव से हम जिस पक्ष में चले जाएंगे उस पक्ष के हम हो जाएंगे, मन और भोगों के पक्ष में चले गए तो हार ही हार है समझ लेना, और अपने स्वरूप के तरफ आत्मा के तरफ उसके पक्ष में चले गए तो हम जीत ही जीत है, शांति ही शांति, सुख ही सुख, परंतु दुख मोलने की आदत पड़ गई है, और उसके साथ इनाम में प्राप्त मिलने वाली जो चीज है उससे भी हमें बड़ा आनंद आता है, इसलिए उस तरफ चले जाते, भाई वो ठीक है, चले गए, अशांत होते गए, जो स्वतंत्रता थी उसको छोड़ तोड़ तोड़ करके बंधन और गुलामी में जाकर फंस गए। जिस बंधन को तोड़ने के लिए हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, उसी मनुष्य शरीर के द्वारा जेल में से बाहर निकलने की जगह और अंदर घुसे जा रहे हैं, और सजा और कड़ी होती जा रही है, और कड़ी होती जा रही है, ये बांधो इसको, पीटो, जेल खाने में और पिटाई होती, ये है मन और विषयों का संबंध। खूब आनंद से जाते हैं, ब्याह मनाते हैं, शादी है, लेकिन ऐसा नहीं समझता कि ये बंधन की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसको बड़ा आनंद आता है, चला गया अंदर, तब देखा अरे यहाँ तो जो परिस्थिति है उसमें जब तक वो अपने पास दृष्टि नहीं प्राप्त करता है, उसके तरफ से उसकी समझदारी नहीं है, बस अनजाने ही अंधेरे में पैर रख देता है। जहां पैर रखा कि वहां पर कीचड़ ही पड़ा, अरे ये तो है अंधेरा और पैर पड़ा तो कीचड़ में, अब क्या पीछे तो हट नहीं सकते। फिर एक बार कदम उठाया तो आगे ही आगे बढ़ना ही पड़ता है, उससे पीछे नहीं हट सकते। पीछे हटने जाओगे तब भी दुखी और आगे बढ़ने जाओगे तब भी वही हालत। अब वहां पर जीव भाव आ गया है वो दुखी अशांत है जीव की, क्योंकि लगाव है उसको, भ्रांति बढ़ी हुई है कि वहां पर सुख मिलने वाला है, वहां पर सफलता मिलने वाली है, बड़ा अच्छा है, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े, आशा लेके जा रहा है सफलता की, सुख की, शांति की। लेकिन जैसे अंदर एक एक पैर आगे धरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है कदम कदम, तो वहां पर कीचड़ में और दलदल के अंदर उतरता है, और दलदल के अंदर उतरता है। पहले तो जैसे एक पहला कदम रखा था तब तो पांव ही कीचड़ से गंदे हुए थे, लेकिन दलदल के अंदर उतरने जैसा आगे बढ़ता गया पूरा बदन दलदल से सन गया, न उतार सकता है न बाहर भी निकल सकता। दलदल की क्या हालत होती है? अब स्वयं प्रयत्न करने जाएगा वैसे वैसे वो अंदर ही अंदर गर्त होता जाएगा, और गर्त हो जाए और जाएगा और जाएगा, क्योंकि एक बार उसकी गति उस तरफ की हो गई, बढ़ गई। दलदल में से निकलने के लिए तो एक ही रास्ता, एक ही चारा होता है, वो मार्ग वही है, और दूसरा कोई हाथ पकड़ करके बाहर खड़े खड़े उसको खींच ले। वो खींचने के लिए कोई गुरु प्राप्त हो जाए, कोई उससे परे है, वो निष्प्रूव है, बाहर से खड़ा होकर के अपने पास जो भी बल है, शक्ति है, उपासना की, त्याग की, ज्ञान की, ज्ञान का प्रकाश समझदारी से, वो समझदारी के बल से जो दलदल में गर्त होता गया है उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल सकता। हमारा जीव ही मन और विषयों के तरफ अंदर उतरता जा रहा है, आत्मा ही एक ऐसा है बाहर खड़ा हुआ है दलदल से, इसको विषय भोग के स्वाद की आवश्यकता नहीं है, मात्र अकिंचन दृष्टा हो करके, निरपेक्ष बन करके, अपने ही जीवन में अपना ही आत्मा जीव भाव से अलग बन करके देख रहा है, मन को भी देख रहा है, मन जिस भोगों में लगता है, वासनाओं में, उसको भी देख रहा है। जीव भाव तब आता है जब वो व्यक्ति कर्मों के अंदर बंधता है, कर्म का बंधन ही जीव भाव है, कर्म बंधन से मुक्ति वही आत्म भाव है। जितना हो सके इतना इस उम्र में, इस अवस्था में जितना हमने बंधन मोल लिया है जानबूझ करके, उसी बंधन को अब उतारने के लिए प्रयत्न करो। जीवन भर अब तक के जीवन में बहुत बंधन का स्वीकार किया, उसका संग्रह किया, बनते जा रहे। अब अवस्था ऐसी आ गई है शरीर की भी और आयुष्य की भी, जो जितना चला गया इतना तो बचा हुआ है नहीं, जो है सो कितना वो भी पता नहीं है। तो जितनी उलझने हाथ से मोल ली है उसको धीरे 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 छोड़ते चलो, निकालते चलो। अब मन और भोगों के तरफ जीव की जो आसक्ति है, उसका लगाव है, उसको तोड़ते चलो, बाहर निकल आओ, आत्मा के तरफ चलो, बढ़ते जाओ अपने स्वस्वरूप के तरफ, कि भाई अब जाने का समय आ गया, किनारा सामने दिखाई दे रहा है, थोड़ा ही दूर है, अब 60 से आगे कितना बाकी हो बचा होगा तो पता नहीं है, लेकिन किनारा जो छूट गया तो बहुत आगे निकल गया 60 साल का, पर अब ये नजदीक तो दिखाई दे रहा है, कब हाथ में आएगा पता नहीं। तो उससे आने से पहले भगवान उद्धव जी को यही बात बता रहे हैं कि जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाने का समय आ रहा है उसका